अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय आनंद परमानंद के ये क्षण सत्संग की रूप में जो प्राप्त हुई हमको ये अमृत बेला है जिसका हम लोग नित्य प्रति पूर्ण आनंद लेते हैं। महापुरुषों के तप तेज का वो प्रभाव, महापुरुषों की अनुपम कृपा जो हमारे आपके ऊपर बरस रही है और परिणामतया हमको इस सुंदर सत्संग की प्राप्ति हो रही है। महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, हमारा जो वर्तमान में विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भगवान की बाल चरित्र बाल चपल लीलाएं जिनको कहा जाता है, लेकिन ऐसी चपलताओं में भी अथाह आध्यात्मिक अर्थों को समाविष्ट किए हुए भगवान की सुंदर लीलाएं हमको आपको सचेत करने के लिए एकमात्र कार्य है सत्संग का, हमको आपको हमारी गलती का बोध कराना और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अपनी गलती की अवहेलना करना यही बुद्धिहीनता है। और ज्यादातर देखा जाता है कि हम अपने देहाभिमान के कारण बुद्धि दूसरे की बात की अवहेलना करने में ही हमको आनंद आता है, चाहे वो सांसारिक विषय हो और चाहे वो आध्यात्मिक विषय हो। लेकिन जब हम निष्कपट और निर्मल हृदय हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण पूर्णतया शांत हो जाता है, और पहले भी आपको बताया फिर से अंतःकरण शुद्धि का मतलब क्या है। अंतःकरण में चार चीजें हैं, क्या क्या हैं? नंबर एक बुद्धि, उसके बाद जो है चित्त आता है, उसके बाद मन और उसके बाद देहाभिमान कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए। ये हमारा अंतःकरण है। अब इसको शुद्ध किया जाए तो कैसे किया जाए? अब बुद्धि को शुद्ध कैसे करेंगे? अरे भाई, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम करना है निश्चय। निश्चय करना किसका कार्य है? तो बुद्धि जिस समय परमात्मा का निश्चय कर ले, बुद्धि क्या हो गई? शुद्ध हो गई। जब तक बुद्धि संसार और परमात्मा के बीच में फंसी हुई है, तब तक बुद्धि क्या है? अशुद्ध है। ये बुद्धि का शुद्ध होना। उसके बाद आपका चित्त आता है, चैत्यता। चित्त की विशेषता क्या है? चैत्यता, स्फुरण जिसको कहते हैं, है ना। ये जो बार बार हमारा स्फुरण होता है, हमारा शांत स्वभाव, चित्त का सबसे विशेष विशुद्ध है, शांत है। लेकिन उसी अशांत चित्त को हम क्या कर देते हैं? अशांत कर देते हैं, तो हमारा चित्त जो है अशुद्ध हो जाता। और जिस समय ये चित्त शांत हो जाता परमात्मा को प्राप्त करके, चित्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया, है ना। तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से वर्षा काल में बूंद जो है पानी की जब ऊपर से गिरती तो कैसी होती है ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, कैसी होती है? एकदम शुद्ध आर पार दिखाई देता। लेकिन ज्यों ही वो भूमि का स्पर्श करती है, वैसे ही उसका रूप क्या हो जाता है? उस सुंदर शुद्ध साफ बूंद का नाम ही बदल जाता है, उसको लोग कीचड़ बोलने लगते है ना। शुद्ध बूंद क्या बन गई? कीचड़ बन गई। बस यही हम आप हैं। हम थे तो बिल्कुल शुद्ध उस बूंद की तरह, लेकिन अब क्या बन गए? क्योंकि संसार में हम क्या हो गए? वो पानी सन गया, वो पानी जो है मिश्रित हो गया। किसके संग? हाँ, भूमि के संग, मिट्टी के संग मिश्रित हो जाने के कारण उसका अशुद्ध रूप हो गया, और वो परम शुद्ध चित्त जो है वो अशुद्ध हो गया महाराज। इसी प्रकार से हम आप अपने आप को अशुद्ध बना बैठे, और तब प्रारंभ हुआ आपके मन की अशुद्धता का रूप। मन कैसे अशुद्ध हुआ? मन की विशेषता क्या है? अरे मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प, संकल्प का मतलब ऐसा करूंगा, और विकल्प का मतलब ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। हमारा सारा जीवन इन्हीं संकल्पों और विकल्पों में क्या हो जाता है? निकल जाता है। जिस दिन ये संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं और हम पूर्णतया परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, हमारा मन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है यानी शांत हो जाता है ना। मन का शांत हो जाना यानी जो कचकचाहट है ये संकल्प विकल्प की, ये हमेशा के लिए क्या हो जाती, मन शांत हो गया यानी मन शुद्ध हो गया। अब उसके बाद बचा अहंकार। अहंकार का तो सीधा सा अर्थ है, अहंकार अशुद्ध कैसे होता है, है? क्यों भाई अहंकार की अशुद्धता कैसे आई, है ना। देखो अहंकार अशुद्ध, अहंकार तो शुद्ध है वास्तविकता में, भाई मैं ब्रह्म हूं ये शुद्ध अहंकार है। जो हम हैं, भाई एक बात बताओ, एक भिखारी है, उस भिखारी को राजा की गद्दी में बैठा दिया गया। अब वो राजा की गद्दी में बैठकर कहने लगे कि मैं राजा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, शुद्ध अहंकार या अशुद्ध अहंकार है, ये अशुद्ध अहंकार कहलाएगा, क्योंकि वो भिखारी राजा संभव नहीं है। लेकिन उसी को हटाकर जब स्वयं राजा उस गद्दी पर आकर बैठ जाता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती मैं राजा हूं, लोग बोलने लगते हैं कि आप जो है क्या हो, क्योंकि वो वास्तविक अहंकार है। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि जो है ये शुद्ध अहंकार है, और देहाभिमान जो हम हैं नहीं उसके कारण जो है ये क्या है, अशुद्ध अहंकार है। और हम देहाभिमान के संग क्या हो गए, अरे भाई जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए, देखो इस देहाभिमान के संग परम बिल्कुल जो है परम रूप से हम मिश्रित हो चुके हैं। इसका परिणाम ये है कि हमको किसी भी रूप में ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी शरीर से अलग होने वाले हैं या शरीर से अलग हमारी कोई सत्ता है। लगता है आपको कभी, है सोते उठते जागते, है ना। एक हमारे पास प्रेमी आए तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम पढ़ते हो ब्रह्म ज्ञान पढ़ते हैं ना हम लोग, तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि हम क्या हो गए, हाँ ब्रह्म। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सो जाते हो तब क्या हो जाते हो। तो वो ब्रह्म गायब हो जाता उस समय। मैंने कहा फिर जब उठ जाते हो तो, बोले फिर से हम ब्रह्म हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोगों का ब्रह्म ज्ञान है, सुबह आता है और रात को चला जाता है और सुबह फिर आ जाता है। तो ये अशुद्ध अहंकार, ये जो अहंकार है ये कैसा अहंकार है, ये अशुद्ध अहंकार है। लेकिन जब हम वास्तविकता में परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, वास्तविकता में जब हमको बोध हो जाएगा, निस्वरूप का बोध हो जाएगा, तब फिर जैसे भगवान ने श्री कृष्ण ने जो है गीता में क्या कहा, मैं है। लोग बहुत से लोग जो बेचारे अनभिज्ञ हैं या अर्ध ज्ञान की अवस्था में बोलते हैं, महाराज एक तरफ तो जो है गीता में भगवान कहते हैं अहंकार का नाश करो, और उन्होंने खुद ही गीता में मैं हूं है ऐसा मैं। तो वो वास्तविक जो शुद्ध अहंकार जो हम हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने उस जो शरीर है, यद्यपि वो दिव्य शरीर है, रचा हुआ शरीर है, लेकिन फिर भी उस शरीर को नहीं, आत्म स्वरूप को, अपने आत्मा को ही वहां पर जो है उन्होंने, जो अखंड रूप है भगवान का, उसको ही मैं कहकर संबोधित किया। लेकिन हमारा आपका मैं तो ये जो नाम रूप धारी हम हैं, ये जो अहंकार की अशुद्धता है, जब ये मैं निकल जाती है, हम अपने अस्तित्व को जो समझने लगते हैं कि वास्तविकता में हमारा अस्तित्व क्या है, हम ये नहीं है, तब ये अहंकार भी क्या हो जाता है, शुद्ध अहंकार को प्राप्त हो जाता है। हमारी अशुद्धता अहंकार की नष्ट होती, इस प्रकार से हमारा अंतःकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। ये अंतःकरण को शुद्ध करने का क्या है, तरीका है ना। कोई उसके लिए साबुन नहीं है, और ना ही ये आप सोचो कि आप बहुत सारा सुन के या पढ़ा के किसी भी रूप में ये अंतःकरण की शुद्धि संभव नहीं है। ये तो स्वयमेव आपको प्रयत्न करने हैं, और जब आपका अपना प्रयत्न या पुरुषार्थ कार्य करेगा तभी ये संभव होगा। तो प्रयाश्चित, जितनी जल्दी हम प्रयाश्चित कर लें, है ना, तो उतनी जल्दी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और यही यहां पर ब्राह्मणों के रूप में जो हमारा कथानक चल रहा है, यज्ञ पत्नियों की कृपा पर, जिस समय उन्होंने भगवान को समझने की चेष्टा की कि देखो वास्तविकता में जिनको हम अलग से ही भज रहे थे, जब उन्होंने अपने पढ़े हुए ज्ञान का ही है ना, क्योंकि ज्ञान जो है केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ के इसीलिए हमारे यहां मनन चिंतन निध्यासन शब्द लगाए गए उसके संग, जब हम बारंबार जो है मनन चिंतन करते हैं तब ये बात समझ में आती। जब भगवान उनके समक्ष आकर निकल गए और भगवान को भी वो समझ नहीं पाए, तब महाराज उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया, और विचार करके जब उन्होंने देखा कि वास्तविकता में जो संपूर्ण संसार को भोजन कराने वाला है तद्व्यांचा जनमोहिनी, ये तो भगवान की जगन मोहिनी माया है, जिसके कारण हम उनको याचक समझ रहे थे कि ये साधारण सा बालक हमारे सामने याचक बन के आया है। जब ऐसा उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया तब महाराज उन्होंने जो है उसमें गहराई पाई, विचार में कैसी गहराई पाई, देखा उन्होंने, क्या देखा, देशा काला पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र त्यजो अग्निहा देवता यजमानश्च कर्तुर्धर्मश्च यन्मयः। जब उन्होंने विचार किया महाराज, है ना, इसको कहते हैं मनन, जब बारंबार उन्होंने अपनी प्रयाश्चित बुद्धि से विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि बुद्धि अब शुद्ध होने लगी, निश्चयात्मक होने लगी, परमेश्वर के संग जुड़ने लगी, तो ज्यों ज्यों हम परमेश्वर के संग जुड़ते जाते हैं हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती, निश्चयात्मक होती जाती, तब उनको क्या दिखाई दिया, देश काल है, ये जितने पृथक पृथक द्रव्य हमको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, एकम बीजम बहुधा या करोति, एक ही आम के बीज से अनेक आम बन गए, एक ही बीज से अनेक अन्न उपज गए महाराज, लेकिन वो एक ही था। उसी प्रकार से जब उन्होंने परमेश्वर की विस्तृत स्थिति समझने की कोशिश की अपने जो है बुद्धि के द्वारा, तो महाराज जब उनका चित्त शांत हुआ, देश काल पृथक जितनी भी सामग्रियां या यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं और उसके संग जुड़े हुए मंत्र हैं, मंत्र के संग तंत्र हैं, तंत्र कहते हैं जो अनुष्ठान की पद्धतियां होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, तंत्र, इसीलिए हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र है ना, और जो उसको प्रयोग किए जाते हैं उसमें वो मंत्र है महाराज, है ना। मंत्रों का मतलब क्या है, जो हमको पूर्ण हमारे लक्ष्य की ओर जोड़ता है वो क्या कहलाता है, मंत्र कहलाता है ना। जैसे गुरु लोग क्या देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं कि नहीं देते हैं, तो गुरु मंत्र किसके लिए, गुरु मंत्र का मतलब है परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा रूपी जो लक्ष्य है उसके प्राप्त कराने के लिए हमारे यहाँ मंत्र है। तो मंत्र है, यंत्र हैं, और महाराज जो है ऋत्विज हैं, जो हमारे यज्ञ के आचार्य हैं, और अग्निदेव, देवता, यजमान हैं, और ये जितनी भी चीजें हैं, यज्ञ है या धर्म है, ये सब के सब परमेश्वर का ही रूप हैं, परमेश्वर से भिन्न कुछ भी। जब उनको ये बात समझ में आई, है ना, क्योंकि जब तक आप भिन्न भिन्न देखते रहते हैं, हर चीज में भिन्नता का अनुभव करते हैं, द्वैत का अनुभव करते हैं कि ये आचार्य है, ये मैं अलग हूं, आचार्य अलग, यज्ञ अलग है, सामग्री अलग है, लेकिन जब हमारा सर्वोपरि ज्ञान आ जाता है, तब महाराज श्रीमद भगवद गीता में भगवान ने कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब सब कुछ उसके लिए ब्रह्म रूप ही हो जाता है, तब ऐसे जो है ज्ञानी पुरुष का, योगी पुरुष का प्राप्तव्य भी क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बारंबार शुद्ध बुद्धि से विचार किया, अशुद्ध बुद्धि से तो महाराज उनको अपनी सहधर्मिणी यानी जो है अपनी पत्नियां, मूर्ख पत्नियां नजर आती थी, है ना, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। जब भेद बुद्धि होती देखो सामने वाला मूर्ख दिखाई देता, लेकिन जब बुद्धि अभेद हुई तब उन्होंने प्रयाश्चित करके जब देखा तो महाराज ये दिखाई दिया उनको कि देखो कितनी विचित्र बात है कि सब कुछ परमेश्वर रूप ही है, और उसको हम भिन्न भिन्न रूपों में देखते हुए परमेश्वर को अपने समक्ष पाकर भी हम परमेश्वर से दूर बने रहे। ये सबसे बड़ा जो रहस्य है, रहस्योद्घाटन हमारे अपने अंतःकरण का है कि सबसे नजदीक हमारे यदि कोई है तो परमेश्वर है, और नजदीक क्या कहा जाए, वेदांत की भाषा में तो हमारा रूप ही है और अंग प्रत्यंग है महाराज, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज ही नहीं है, चाहे वो हमारा, हम जिसको वेदांत की भाषा में या शास्त्र की भाषा में नश्वर शरीर कहते हैं, तो ये पांच भौतिक शरीर भी तो ब्रह्म रूप ही है ना। इसीलिए महापुरुषों के मृत शरीर को भी महाराज क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है और उनको समाधि दी जाती है यज्ञ अग्नि संस्कार करने की बजाय। तो क्यों समाधि दी जाती? इसीलिए क्योंकि वो उनका जो शरीर है वो भी परम ब्रह्म स्वरूप ही हो गया उस अनुसंधान उस प्राप्तव्य के कारण महाराज। तो जिस समय ब्राह्मणों ने इस प्रकार से अनुसंधान किया, शुद्ध बुद्धि से अपने स्वरूप को निहारा महाराज, तो उनको हर जगह भगवान के दर्शन, जो सामने आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाए लेकिन बुद्धि शुद्ध होते ही महाराज उनको हर जगह भगवान के क्या होने लगे, दर्शन होने लगे। देखो ये है साधारण सी लीला है महाराज, लेकिन असाधारण तत्व है। हम कहां गलती करते हैं? ये लीलाएं जो समझाना चाहते हैं भगवान, हमारी गलती कहां है? अवहेलना करने से, किसी चीज की अवहेलना करने से उसका उत्तर नहीं मिलेगा। अरे भाई एक बात बताओ, आप रास्ते में चलते हो, घर से बाहर निकले, रास्ते में एक पत्थर मिलता है, उस पत्थर की अवहेलना करके निकल जाने में भला है या उस पत्थर को रास्ते से हटा देने में भला है? हैं? एक कांटे की झाड़ी आपके रास्ते में रोज आती है, रोज आपका वस्त्र उसमें फंसता है, उस कांटे की झाड़ी की अवहेलना करके निकल जाने में भलाई है या उसको हटा देने में भलाई है? हटा देने में क्या फायदा होगा? अवहेलना करने में केवल आपका भला हो सकता है, लेकिन उसको हटा देने में तो हजारों का क्या होगा, हजारों मनुष्यों का भला होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र जो समझाना चाहता है कि हम सत्संग एकमात्र देह सत्संग का ही है। हम सब जानते हैं एक है शास्त्र, तो योग वासिष्ठ तो उदाहरण देता है, एक कुत्ता भी जानता है पाप क्या है और पुण्य क्या है, है ना? देखो जब आप कुत्ते को प्रेम से खिलाओ तो वो कुत्ता जो है दुम हिलाता रहेगा और खाता रहेगा। अब आप क्या करो, एक बिस्किट का पैकेट रख दो और छुप के खड़े हो जाओ। अब वो कुत्ता जो है बिस्किट का पैकेट जब ले रहा हो उसी समय आप निकल आओ बाहर, तो वो दुम हिलाएगा या भागेगा? देखो तो यानी वो बिना पढ़ा लिखा स्कूल नहीं गया है और ना आपके सत्संग अटेंड किए उसने, लेकिन वो कुत्ता भी जानता है पाप क्या है और पुण्य करते समय महाराज वो भी दुम हिलाकर प्रसन्न होता है, और पाप करते समय आपको देखते ही क्या होता है, भागना शुरू कर देता है कि नहीं? देखो तो हमारे अंदर सब कुछ है, हम सब जानते हैं, लेकिन चूंकि हमारी आदत अहंकार के कारण, अशुद्ध अहंकार के कारण, देहाभिमान के कारण किसकी पड़ी हुई है, किसी भी चीज की अवहेलना कर देना, अवहेलना कर देने के कारण हम इन्हीं ब्राह्मणों की तरह वेदज्ञ ब्राह्मणों का इसीलिए हमारे यहां उदाहरण दिया गया। और स्वयं भगवान के जो साक्षात स्वरूप हैं, जिनको हम लोग उद्धव जी कहते हैं, अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया और अपने कार्य का जो है पूर्णतया उत्तरदायित्व उद्धव जी को प्रदान किया, और वो उद्धव जी भी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य कैसे हैं। जिस प्रकार से ये ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नियों को नहीं समझ पाए, उसी प्रकार से उद्धव जी भी गोपियों को नहीं समझ पाए थे, है ना? क्योंकि शुद्ध अंतःकरण को समझ पाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण वाले के जीवन शैली को आप देखें तो आप बोले पागल है, शुद्ध भाषा में आप कह देंगे पागल है। जैसे ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों को क्या बोलते थे, तुम लोग तो बिल्कुल क्या हो, और अपने आप को क्या मानते थे, लेकिन क्या खो दिया, ईश्वर को खो दिया, अपने समक्ष आए हुए याचक बनकर आए हुए ईश्वर को क्या कर दिया, खो दिया। लेकिन जहां शुद्ध अंतःकरण है, राजा बलि को देखो महाराज, भगवान उनके सामने याचक बन के आए, राजा बलि ने खोया नहीं, उन्होंने पाया महाराज, क्योंकि उनका अंतःकरण, इतना शुक्राचार्य जी ने भटकाने की चेष्टा की लेकिन शुक्राचार्य जी भी बलि राजा बलि को अपने स्थान से अलग नहीं कर पाए। तो ये शुद्ध अंतःकरण और अशुद्ध अंतःकरण का जो प्रायश्चित स्वरूप दिखाया गया, जब उन्होंने महाराज पूर्णतया विवेचन किया अपने जीवन का, अपने पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने वेदों के द्वारा प्राप्त किया था, तो हर जगह क्या ऋतिज, क्या यज्ञ, क्या अनुष्ठान की पद्धति, क्या कर्म, क्या मंत्र, सब कुछ परमेश्वरमय ही उनको दिखाई देने लगे। और तब उन्होंने जो है अपने आप को धिक्कारा, यह भी मूढ़ा न विद्यते, कहते हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हमारे समक्ष सब कुछ जानते हुए, उनकी कथाओं को सुनते हुए भी, उनके बारे में सुनते हुए भी हम समझ नहीं पाए और उनको पहचान नहीं सके। लेकिन कहते हैं फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। बोले क्या कृपा है, अहो वयम धन्यतमा एषाम नस्ताद्रसी स्त्रिया। कहते हैं हम धन्य हैं, फिर भी हम धन्य हैं, क्योंकि हमने जो है इस प्रकार की पत्नियों को प्राप्त किया है जिन्होंने महाराज अपनी बुद्धि से परमात्मा की भक्ति करके अविचल प्रेम से जो है युक्त होकर भगवान को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है ना। जो सब शब्द हैं वो क्या हैं, बोले सबसे पहले जरूरी है अविचलता, यानी चलायमान जो हमारी भागम भाग वाली अवस्था है ये ठीक नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा शरीर सब कुछ एक अविचल स्थिति में चलना चाहिए, यानी सीधे परमेश्वर की ओर जब निशाना होता है, जैसे बाण इधर उधर भटकता नहीं अपने निशाने में जाकर ही गड़ जाता है, उसी प्रकार से अपने लक्ष्य की ओर संधान किया गया ये जो शरीर और शरीर के संग जुड़ा हुआ जो अंतःकरण है, ये जब बिल्कुल उन ब्राह्मण पत्नियों की तरह है ना, इसीलिए उन्होंने जो श्रुतियों में हम पढ़ रहे हैं वो उन्होंने महाराज किया। वहां पर विचार की आवश्यकता नहीं थी कि हम भोजन ले जाएं या ना ले जाएं, कौन है, कितने हैं, कैसा है, क्या है, क्योंकि शास्त्र कहता है तुम जैसे हो, क्योंकि भगवान के यहां पापी और पुण्यात्मा का कोई भेद नहीं है। सबसे बड़ी अध्यात्म की विशेषता तो ये है, भगवान कहते हैं चाहे तुम पापी हो चाहे वो पुण्यात्मा हो, दोनों अगर मुझे समर्पित हो जाएं, तो इसीलिए हमारे यहां जितने भी राक्षस या जितने भी दैत्य असुर जिनका भी भगवान ने वध रूप जो हमको दिखाया जाता है, वध नहीं बल्कि वहां पर उद्धार शब्द प्रयोग किया गया। क्या शब्द है, यहां भगवान उद्धार करते हैं, क्योंकि यहां कुछ भी मरने वाला नहीं है, सब समुद्र की लहरें ही हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने इस प्रकार से भगवान का धन्यवाद किया कि देखो भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि भगवान ने हमको इस प्रकार की पत्नियां दी और जिन्होंने महाराज अविचल प्रेम युक्त भक्ति से भगवान को प्राप्त किया और उसके बाद उनकी वजह से हमको भगवान का बोध हुआ। कहते हैं इस प्रकार से जब उन्होंने बारंबार प्रयाश्चित किया तो कहते हैं वहां पर उन्होंने फिर पुनः क्षमा याचना की भगवान से और अंत में जो है यहां पर सुखदेव जी ने बताया बहुत ही सुंदर चीज। कहते हैं भगवान के मोह से मोहित होने के कारण, क्योंकि हमारे यहां कहावत है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई संदीपते भवने तो कूप खन्नम, जब घर में आग लग जाए तो फिर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से महाराज जब उन्होंने देखा कि हमने भगवान का आए हुए भगवान का तिरस्कार कर दिया तो महाराज पुनः उनके अंदर इच्छा हुई कि हम जाकर भगवान के दर्शन करें। इति स्वागमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलिना दिद्रच्छवोपच्युतो कंसाद भीता न चाचलन। ये है देखिए, कहते हैं जब उनको कृतहेलना, कृष्ण ते कृतहेलना, जो भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने अवहेलना की थी उसका परिणाम तो उनको भुगतना ही था। उन्होंने यद्यपि जो है अपने अपराध का बड़ा पश्चाताप कर लिया लेकिन फिर भी दिदृक्ष वो अच्युतो हो, कहते हैं अच्युत भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की उनकी इच्छा हुई कि चलो हम भी जो है देखें जिनके दर्शन करके हमारी पत्नियों ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की है महाराज। लेकिन वहां पर क्या खड़ा हो गया, देखो है ना, इतना शुद्ध होने के बाद समझने के बाद भी जो गलती हो गई सो, कहते हैं कंसाद भीता न चाचलन है ना, क्योंकि ज्ञानी पुरुष क्या हो जाता, भयमुक्त हो जाता है। उन स्त्रियों के अंदर जो आपको बताया था पुत्र पति पिता जो भी थे महाराज, उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन निर्भय होकर परम भक्ति की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या है, निर्भयता। हमको जब हर चीज से, और सबसे बड़ी निर्भयता क्या है, मृत्यु भय से निवृत्त हो जाना, क्योंकि ज्ञान किसके लिए, जिसमें मृत्यु भय से हम ग्रसित हैं, इस मृत्यु भय को ही तो समझना है कि हम जीने मरने वाले। हाँ, क्योंकि ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर के मरण से हमारा मरण होने वाला, जिसने ये भय अपने चित्त से मन बुद्धि से निकाल दिया, फिर उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो देखो, क्योंकि अशुद्ध अंतःकरण था, प्रयाश्चित भी किया, लेकिन महाराज एक बार भगवान निकल गए हाथ से तो निकल गए, फिर से भय खड़ा हो गया। इच्छा भी है कि भगवान के दर्शन करें, लेकिन वहां पर कंस का भय खड़ा हो गया कि अगर कंस को पता चलेगा कि हम जो है उन छोटे छोटे ग्वाल बालों के दर्शन करने गए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान, तो महाराज जो है कंस हमारा ही क्या करा देंगे, वध करा देंगे। ऐसा विचार करके महाराज उन्होंने भगवान के दर्शन की इच्छा को वहीं पर क्या कर दिया, है ना। इसको कहते हैं योग भ्रष्ट अवस्था, है ना। सब कुछ जान भी लिया, प्रयाश्चित भी कर लिया, प्रयाश्चित करने के बाद ये निश्चय भी कर लिया कि हाँ यही ब्रह्म है, लेकिन फिर से भय क्या हो गया, दीवार बनकर खड़ा हो गया। बोलो हमारे आपके संग यही होता है कि नहीं होता, है ना। इसी को तो कहते हैं सत्संग भवन से निकलते ही क्या याद आने लगता है, संसार और संसार के कार्य, है ना, वही सत्य लगने लगते हैं। ये जो भीत, ये जो भय की अवस्था है हमारा, ये बार बार हमारे में बिल्कुल, हम लोग ज्ञान के निकट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ही, जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कथाकार लोग कभी कभी, कि कोई नास्तिक था और उस किसी ज्योतिषी से जो है उसने वो कहते हैं ना कि कंपटीशन करना, उसने प्रतियोगिता कर ली, मैं नहीं मानता तुम्हारे ज्योतिष को, बताओ। बोले जो है हरिद्वार के क्षेत्र की बात है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे, उसने ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में गंगा स्नान नहीं है आज। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारा ज्योतिष एक तरफ, मैं दिखाता हूं देखो। अब वो जो है पहुंच गया महाराज हर की पौड़ी पे खड़ा हो गया, बोले बताओ मेरे भाग्य में गंगा स्नान है कि नहीं। बोले तुम्हारे भाग्य में गंगा स्नान नहीं है, मैं सामने खड़ा हूं, जितनी बार मर्जी आए गोता लगाओ। बोले लगाओ। बोले तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं लगाता। है ना। तो जो चीज है नहीं भाग्य में वो मिलती, हाँ। बोले तो मेरी मर्जी है, तो खड़ा हूं सामने, बताओ, गंगा जी के सामने खड़ा हूं, जितनी बार मर्जी आए लगाऊं। तो लगाओ, लेकिन लगाता नहीं है, है ना, क्योंकि नास्तिक भाव उसका बीच में क्या हो जाता है, दीवार बन के खड़ा हुआ था, गंगा नहा के क्या मिलेगा। तो ये जो है हमारा जो अपना अंतःकरण की अशुद्धि का रूप है, यहां दर्शाता है कि भय खड़ा हो गया, कंस का भय खड़ा हो गया। यद्यपि भगवान को समझ भी लिया, भगवान की कृपा भी हो गई और भगवान को के निकट भी पहुंच गए, लेकिन महाराज फिर भी ये अशुद्ध जो है संस्कार सामने आ गए, कंस का भय सामने आ गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो भगवान के दर्शनों से वंचित रह गए। यानी कहने का तात्पर्य ये जो सुंदर कथानक है, कितने दिनों से जो विस्तृत रूप से हम लोगों ने इसकी चर्चा की, उसका एकमात्र कारण है कि जो हमारा ज्यों ज्यों आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, हमारा ये पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना ये सब तभी सार्थक है जब हम उस सत्य को प्राप्त कर लें। क्योंकि जब तक जो मूल चीज है, अगर गंगा के किनारे जाकर गंगा स्नान ही नहीं किया तो फिर वहां जाने का उपयोग क्या है। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन जो हम लोग करते हैं या सत्संग जो करते हैं, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ये तभी सार्थक है जब हम इससे अपनी मूल वस्तु को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। अन्यथा तो महाराज अगर संसार ही इसका लक्ष्य रह गया तो फिर इन सब चीजों का कोई उपयोग नहीं है। तो हमने ज्यादातर देखा कि लोग जो है अध्यात्म के द्वारा अपनी बीमारियों को ठीक करते रहते हैं, है ना। अन्नमय कोष से हम ऊपर उठ ही नहीं पाते, है ना। अन्नमय कोष से जब ऊपर उठे तब प्राणमय में आए, फिर मनोमय में छूटेगा तो कुछ भी नहीं। सबको समन्वयात्मक रूप से लेकर के और अंतःकरण बिल्कुल एक परमात्मा में जब आपका हो जाएगा, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नजर नहीं आएगा, ब्राह्मण पत्नियों की तरह, जहां पर किसी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं रहेगी। भेद दृष्टि का समाप्त होना ही ब्रह्म ज्ञान है। जिसको अभेदता कहा जाता है या अद्वय कहा जाता है या अद्वैत कहा जाता है, जहां पर दो का भाव ही ना रह जाए, केवल एक ही एक रह जाए, तो इस यही हमारे जीवन के पढ़ने पढ़ाने का क्या है लक्ष्य है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है महाराज। तो इसलिए जो है ये कथानक यहां पर दिए जाते हैं, और केवल भागवत में नहीं है, हमारे यहां वेदों में भी ये इसी प्रकार के उदाहरण हैं। जितने भी उपदेश हैं वो सब वेदज्ञ विद्वानों को ही दिए गए, जिन्होंने वेद के जो है अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया है महाराज, है ज्योतिष शास्त्र के परम ज्ञाता है ना। क्योंकि अभी तो ज्योतिष शास्त्र आप लोगों ने उतना नहीं देखा, नहीं तो हमारे यहां तो ज्योतिष शास्त्र को अपरा कहा गया है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र महाराज जिस जो है एक एक आपके जीवन के कैलकुलेशन को करने वाला, कि कब क्या होगा कब क्या होगा, पूरा अगर विवेचन कर दिया जाए तो उससे कोई इधर से उधर नहीं कर सकता आपके जीवन को, क्योंकि सब पूर्व निर्धारित हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं या जितने भी हमारी गतियां हैं शरीर की, ये सब पूर्व निर्धारित हैं। इसीलिए ना तो वहां पर एक सांस ज्यादा मिलती है और ना एक सांस कम मिलती है, पूरी भोगनी पड़ती है महाराज। बहुत से लोग आप हॉस्पिटल में जाओ, मरने के लिए तैयार खड़े हैं, मृत्यु नहीं हो रही, और एक को इतना भी समय नहीं मिलता कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, है ना, ऐसी स्थिति देखी जाती है महाराज। तो ये सब जितना भी है ये सब अपरा है। जब हम महाराज परा में प्रवेश कर जाते हैं शुद्ध अंतःकरण होने पर, तब वो आनंदमय कोष की अवस्था आती है, और ऐसे आनंदमय कोष की अवस्था में जो परा ज्ञान को धारण करने वाला परम जिज्ञासु जब स्थित होता है महाराज, उसको फिर ना कुछ समझाना पड़ता है और ना उसको कुछ समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब उसका जो अहंकार है वो शुद्ध अहंकार है। कैसा अहंकार है ना, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है तो है, और कोई नकली पुत्र बना हो राजा का, पिता राजा हो ना, लेकिन वो अपने आप को क्या कहे, मैं राजा का, ये अहंकार उसका कितने दिन काम करेगा, दो चार दिन, लेकिन एक दिन जो है जब पोल खुल जाएगी, राजा का पुत्र नहीं है, तो महाराज जो है उसका सारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आप जब परम ज्ञान अवस्था जिसको कहते हैं ज्ञानावस्था में पहुंच जाते हैं, तब वो विशुद्ध अहंकार कहलाता है, क्योंकि वहां पर आपकी अपनी सत्ता है और आपकी अपनी सत्ता के अलावा वहां कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं महाराज। तो इस प्रकार से ही कथानक है। उसके बाद श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्रसिद्ध, जिसके कारण भगवान को गिरधर नाम दिया गया महाराज, इंद्र यज्ञ को बंद करके भगवान ने गोवर्धन यज्ञ प्रारंभ कराया, और जो भगवान के विशेष भक्त लोग हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं जाके महाराज, और चलती रहती है ना। और अब तो बहुत ही ज्यादा जो है इसका, पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब तो गोवर्धन परिक्रमा का इतना ज्यादा जो है महत्व तो हो गया है, या लोग इतना मानते हैं। कभी अगर आपको मौका लगे तो 31 दिसंबर जिसको हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, जब तो लोगों के अंदर भगवान अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो 31 दिसंबर को महाराज आपको वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी सर्दी होती है मथुरा वृंदावन के इलाके में। लेकिन महाराज वहां पर कहां कहां से लोग आते हैं और पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भयंकर सर्दी में नंगे पैर लोग जो है परिक्रमा करते हैं। 31 दिसंबर को प्रारंभ करके 1 तारीख को प्रातःकाल सुबह जो है बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो महाराज ये है लोगों की श्रद्धा, तो भगवान के तरह तरह के श्रद्धा के रूप हैं महाराज, है ना। तो सब कुछ भगवान को कोई भी प्राप्त कर सकता है और किसी भी रूप से प्राप्त कर सकता, ये निश्चित ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बस यही एक रास्ता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी रूप में और कैसे भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से महाराज सागर सागर है, उत्तर से जाओ तो भी सागर मिलेगा, पश्चिम से जाओ तो भी सागर मिलेगा, हर जगह से आपको सागर ही मिलने वाला है। तो इसीलिए देखो आपके यहां तो काबुल से चला हुआ एक पठान जो है, जिसको हम लोग रसखान के नाम से जानते हैं, जिनके बाप दादा भी नहीं जानते थे अध्यात्म क्या होता, कृष्ण क्या होता है, राम क्या होता, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन एक चित्र ने ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया महाराज की, संपूर्ण ज्ञान प्रवेश कर गया उनके अंदर, और वो रसखान कहते हैं पाहुन हो तो बसो हैं? इसी पहाड़ का ही पत्थर बनाना, कदम्ब में ही महाराज मुझे पक्षी बना के बैठा देना, कदम्ब का वृक्ष बना देना, सब स्वीकार है। ये है वेदांत का चरम, क्योंकि उनको कृष्ण के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। इसको कहते हैं सर्वात्म भाव। वेदांत की भाषा में आप इसको क्या कहते हैं? सर्वात्म भाव कहते हैं। और इसी को भक्त जो है सब जगह एक अपने परमेश्वर को देखने वाला, और यही भगवान श्री राम ने जो है हनुमान जी को उपदेश में दिया, सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं अनन्य भक्ति क्या है कि जब संपूर्ण संसार को अपने स्वामी के रूप में देखकर जो भक्त है वो सेवा में लग जाता है कि सारा संसार मेरे स्वामी का रूप है और मैं पूरे संसार का एकमात्र सेवक हूं, तब उसकी भक्ति अनन्यता को प्राप्त हो जाती, जहां अन्य नहीं है, ऐसी अनन्य भक्ति को प्राप्त होता है। तो हमारे यहां गोवर्धन पर्वत की बहुत ही सुंदर तरह तरह के नाम है, इसके 56 भोग के नाम से लोग श्रीमद् भागवत में जो है गोवर्धन लीला मनाते हैं। जब साप्ताहिक भागवत में आपने देखा होगा 56 व्यंजन का भोग लगाया जाता है भगवान को, लेकिन परम वैज्ञानिक सांसारिक रूप से इतना बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए ये लीला बहुत ही हमारे ग्रंथों की विशेषता और हमारे शास्त्रों की विशेषता है महाराज। जो आज हम अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ रहे हैं, आज से हजारों साल पहले भगवान ने वो साधारण सी बाल लीला में, बाल चपल लीला, 7वें वर्ष की लीला है ये भगवान की, 7 वर्ष की जो है आयु में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। किसके लिए? क्योंकि ये जो संसार है ये संसार कर्म प्रधान है, ध्यान देना। हम लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, ये संसार कैसा है? कर्म प्रधान है। मूल हमारा सनातन धर्म है वेदांत, यानी ज्ञान है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते अर्जुन, है ना? तो लेकिन वास्तविकता में तो यहां जो कुछ है सब कर्म प्रधान। जब भगवान को, श्री राम को हाथ का तकिया लगाए हुए निषाद राज ने देखा तो महाराज उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि राजा का पुत्र और भूमि में हाथ का तकिया बनाकर लेटा हुआ है, महाराज दुखी हो गए। लक्ष्मण जी ने उनके आंखों से आंसुओं को पोंछ दिया, बोले निषाद राज रो मत। और उन्होंने कहा को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में कोई ना किसी को सुख दे सकता है और ना दुख दे सकता है, ध्यान देना। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो कुछ भी है ये सब हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा है, वो हमको ही भुगतान करना पड़ेगा, दूसरा कोई उसका भुगतान नहीं करेगा। इसलिए निषाद राज तुम अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लो, यदि भगवान श्री राम ने भी हाथ का तकिया बनाकर भूमि में शयन किया है तो ये इनके अपने कर्मों का परिणाम है, किसी दूसरे का नहीं है, ध्यान देना। चर्म हमारे यहां इसीलिए कर्म की विशेषता बनाई गई महाराज। कर्म योग गीता में जो है भगवान ने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल की इच्छा का अधिकार नहीं। तो कर्म प्रधानता है महाराज इस संसार में। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने गीता में जो है जब यज्ञ का वर्णन किया, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, उसमें अंत में कहा कि जो है यज्ञ कर्म समुद्भव, ये जो यज्ञ हैं इनकी उत्पत्ति किससे होती है? कर्मों से होती है। और वास्तविकता में जो है ये जो कर्म है, और कर्म किसका है? ये सब अन्नमय कोष का रूप है। क्यों भाई, किसका रूप है कर्म? किसके द्वारा? शरीर। अन्नमय कोष कहने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा शरीर हो गया, भौतिक जगत। और वास्तविकता में जो है जितनी भी चीजें आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते, चाहे वो अन्नमय कोष हो, चाहे वो आपका प्राणमय कोष हो, चाहे मनोमय कोष हो, या चाहे वो आपका जो है विज्ञानमय कोष हो, और चाहे फिर अंत में जाकर जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष प्राप्त हो जाने पर भी आप इन चारों कोषों का परित्याग कर सकते हैं। कोई देखा आपने ऐसा वक्ता यहां पर देखा कोई जो बिना खाना खाए बोलता हो, जिसको रोटी की जरूरत न पड़ती हो? कोई ऐसा वक्ता यहां पर आया जो सांस ना लेता हो फिर भी वो प्रवचन करता हो? कोई ऐसा वक्ता देखा जिसको डॉक्टर की जरूरत ना पड़ती हो? क्यों भाई, देखा कोई? ये समाप्त होने वाले नहीं है, ये अंत तक जाने वाले नहीं है महाराज। चाहे वो अन्नमय कोष हो, चाहे वो प्राणमय कोष हो, चाहे वो मनोमय कोष हो, चाहे वो महाराज है ना, जितने भी कोष हैं ये तो अंत तक जब तक आपका शरीर है ये स्वीकार ही करने पड़ेंगे महाराज, चाहे वो कोई भी हो। क्यों भाई, सबको स्वीकार करते हुए तब आनंदमय कोष के लक्ष्य की प्राप्ति होती, अन्यथा संभव नहीं है, है ना। तो इसीलिए जो है ये विशेषता दिखाई गई है यहां पर गोवर्धन यज्ञ के माध्यम से, और भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से महाराज इसको वर्णन करना प्रारंभ किया, क्योंकि इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी, जो आपका है दीपावली के समय आता ना इंद्र यज्ञ का समय, तो वही काल था महाराज, और धन धान्य जो है घर में आ गया था, तो ऐसा जो है समय था, और परिणामतया जो इंद्र के उपासना का समय था उनकी उपासना के लिए तैयारियां चल रही थीं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् निवशन गोपन गोपन इंद्रियाग कृतोद्यमान। कहते हैं इंद्रियाग के तैयारी को देखकर जब वृंदावन में भगवान ने देखा कि एक बहुत बड़े इंद्रयज्ञ की यहां पर तैयारी हो रही है, तो महाराज सब कुछ जानने वाले तद विज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना, सब कुछ जानने वाले आगे पीछे की, लेकिन फिर भी अनभिज्ञ बन गए। इसी को जो है महापुरुष कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं, और इसी को ज्ञानवान कहते हैं, इसी को अपरोक्ष या परोक्ष ब्रह्म। देखो जो अपरोक्ष ब्रह्म है वो क्या हो गया है, अपरोक्ष हो गया है, लेकिन सांसारिक मनुष्य क्या हो जाता है, सांसारिक मनुष्य को क्या पसंद है, परोक्षता या अपरोक्षता है? सांसारिक मनुष्य को क्या पसंद है, है? सांसारिक मनुष्य को अपरोक्षता पसंद है महाराज। क्या पसंद है कि लोग हमारी व्याख्या करें, लोग हमको जानें, लोग हमारा नाम लें, लोग हमारा सम्मान करें। क्यों भाई, सबको पसंद है कि नहीं? दस आदमियों के बीच में आपको कोई मिले आगे, अरे 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 आओ आओ, आपको कैसा लगता है? परोक्षता पसंद है या अपरोक्षता पसंद है? अपरोक्षता पसंद है कि दस आदमियों के बीच में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन भगवान को परोक्षता पसंद है, उल्टा है महाराज। भगवान सब कुछ जानने वाले, सारा ड्रामा जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी महाराज पूछ रहे हैं, प्रश्यावन तो प्रच्छद वृद्धानंद पुरोगमान। वृद्ध जो है वहां पर जो पुरुष थे गोप, उनसे पूछा, पिताजी से पूछा, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागता। ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार के यज्ञ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साधते मखा। ये किसके लिए इतना बड़ा यज्ञ है, इससे क्या फल मिलेगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये मुझे बताइए, है ना। भगवान अनभिज्ञ होकर, सब कुछ जानने वाले अनभिज्ञ हो गए, यही ज्ञानवान की पहचान है महाराज, जो अपने आप को कछुए की तरह क्या कर लेता है, समेटना सीख गया महाराज, है ना। यहां पर जो है विज्ञता का नहीं, अभिज्ञ बिल्कुल मूढ़ बन जाए। भगवान कैसे बन गए, मूढ़ बन गए महाराज, सब कुछ जानने वाले सब कुछ करने वाले मूढ़ बन गए। तो भगवान की गोवर्धन यज्ञ की लीला का जो है कल विस्तार से हम लोग चिंतन करेंगे। जो विज्ञान, जो चीजें, जो प्रकृति का विज्ञान हम आज विदेशियों से पढ़ रहे हैं, वो हमारे यहां हजारों साल पहले किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इसका हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।